ओम शांति। आप सभी का इस सुंदर प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, एक बार अपने लिए ताली बजाइएगा। कितना सुंदर वातावरण, प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। प्रकृति भी कितना खुश है आपको देखकर, आपको लग रहा है हैं? बार बार रिम झिम बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इतना सुंदर वातावरण मिलेगा कहीं हैं? इतना सुंदर ब्रह्मा भोजन और इतना पवित्र वातावरण, तो ऐसे वातावरण का पूरा आनंद लें। कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा इतना सुंदर टॉपिक है आज का, वुमेन फ्लैग बैरियर ऑफ वैल्यूज, की ध्वजावाहक, जो वुमेन की जो ध्वजावाहक, मूल्यों की ध्वजावाहक वुमेन है, जो हमारे अंदर वैल्यूज हैं वो आज प्रायः लुप्त हो चुके हैं। उन वैल्यूज को फिर से पुनः हमें जागृत करना है। तो अभी हम हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं श्रीमती मधु बघेल जी, जो कि आप प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की धर्मपत्नी हैं, जो कि राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ इनर व्हील क्लब की आप सीजीआर हैं और अध्यक्ष स्पर्श चैरिटी क्लब आगरा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं आप, वरिष्ठ समाज सेविका भी हैं आप। आपके लिए हम कहना चाहेंगे, आपके लिए कहना चाहेंगे कि प्रभु की इस महफिल में बजता है सदा अनहद नाद, प्रभु की इस महफिल में बजता है सदा अनहद नाद। आपके आने से तो यहाँ की रौनक में लगे हैं चार चांद, आपके आने से तो यहाँ की रौनक में लगे हैं चार चांद। इस ब्राह्मण परिवार में पधारने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। तो ऐसी महान हस्ती को पाकर हम सभी धन्य धन्य हो गए हैं। आपसे भी हम सुनना चाहेंगे, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है कि मूल्यों की ध्वजावाहक नारी, कि हमारे अंदर जो शक्तियां थीं, जो हमारे अंदर वैल्यूज थे, जो हमारे अंदर शांति थी, सहनशीलता थी और नम्रता थी, हम थी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई हमारे अंदर आज अवगुण प्रवेश कर चुके हैं, अवगुणों ने स्थान बना लिया है। नहीं तो नारी लक्ष्मी कहलाती थी, नारी दुर्गा, नारी सरस्वती, नारी जगत अम्बा, नारी सरस्वती। तो नारी के ऊपर बहुत सारे टाइटल हैं। तो ऐसी नारियां जो वास्तव में, जो भगवान भी जिनके गुणगान गाता है कि वंदे मातरम, ऐसी भारत माताओं की जय हैं, जिनके अंदर इतने वैल्यूज थे, जो गुणों से संपन्न थी, गुणों से भरपूर थी, लेकिन कोई ना कोई कारण से आज उनके अंदर वैल्यूज की कमी हो चुकी है। तो अगर फिर से अगर हम अपने अंदर इन वैल्यूज को धारण कर लें, तो फिर से जो नारी स्वर्ग का द्वार कहलाती थी, वो फिर से स्वर्ग बन जाएगा और ये भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। तो वुमेन का अर्थ ही है, वुमेन अर्थात WOMEN, वुमेन का मतलब है, डब्ल्यू मीन्स है विल पावर। नारी वो है जिसके अंदर विल पावर हो। तो वास्तव में तो हम सबके अंदर विल पावर है, लेकिन वो कभी कभी विल पावर लुप्त हो जाती है। हम उस विल पावर को यूज नहीं करते हैं क्योंकि थॉट हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव या ईर्ष्या वाले या नफरत वाले या इरिटेट वाले, क्रोध वाले, ऐसे ऐसे संकल्पों से हमारी विल पावर कमजोर हो जाती है। या हम ये सोचते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो चार दीवारी के अंदर हैं। तो वास्तव में नारी अगर फिर से अपने अंदर विल पावर को जागृत कर ले तो फिर से वो नारी लक्ष्मी बन सकती है। और ओ से है वननेस, सदा एक की याद में रहना, एक की लगन में मगन रहना। जैसे मीरा का उदाहरण है, मीरा हमेशा श्री कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन हमें तो डायरेक्ट परमात्मा मिल गया है। मिल गया है, अभी मिलना है। कौन कौन समझते हैं हमें मिल गया है? अच्छा, सबको मिल गया है, वाह, अपने लिए ताली बजाओ। तो एक परमात्मा की याद में एक बल, एक भरोसा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब आपका विश्वास एक परमात्मा में हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। कोई भी कार्य आपके लिए संभव है। तो इसलिए वननेस, एक परमात्मा की याद में लगन में मगन रहना। और माइट अर्थात शक्ति, सिर्फ शक्ति नहीं लेकिन हम शिव शक्तियां हैं। हमारे साथ परमात्मा शिव कंबाइंड है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो ये सोचिए कि हमारे बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकता और शिव के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते, दोनों ही कंबाइंड हैं। तो ऐसी शक्ति, शिव शक्ति बनकर के अपने अंदर सारी शक्तियों को जागृत करें और फिर से ऐसी ध्वजावाहक नारी बने जो सारे विश्व में मूल्यों का ध्वज लहराएं, सारे विश्व के अंदर कि आप जैसा मूल्यवान और कोई नहीं है। क्योंकि आज मूल्यों की सबसे ज्यादा कमी है। और इसे एनलाइटमेंट अर्थात दिव्यता, नारी जो है वो दिव्यता की मूरत है। तो ऐसी दिव्यता की मूरत को बनाए रखें, है ना, अपने अंदर वो दिव्यता कम ना होने दें। कई बार छोटी छोटी बातों में आकर के हम अपनी दिव्यता को कम कर लेते हैं, हम अपनी रूहानियत को कम कर लेते हैं। तो अपने थॉट को अगर आप हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और स्ट्रांग रखेंगे तो आपके अंदर कभी भी दिव्यता कम नहीं हो सकती। और इसके बाद है इन नोबल्टी अर्थात उदारता। हमारा दिल हमेशा उदार चित हो, है ना। छोटी छोटी बातों में हम अपना दिल छोटा ना करें, उदार दिल, कि हमें देना ही देना है, देना ही देना है, लेने लेना नहीं है। जब हम लेने की बात करते हैं कि कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें पूछे, है, कोई हमें रिस्पेक्ट दे, हमेशा लेने की बात करते हैं, तो हमारा दिल उदारता के बजाय क्या हो जाता है? छोटा दिल हो जाता है। हम वो कार्य कर नहीं पाते। तो इसलिए सबको प्यार दो, सबको सम्मान दो और सबको खुले दिल से बांटो, सारे गुणों को बांटो, है ना। तो ऐसी दिव्यता की मूरत, ऐसी उदारता की मूरत, ऐसी नम्रता की मूरत, हमारी सभी बहनों का बारंबार स्वागत है। और अभी हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में बहन पधारी हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप अपने चंद्र शब्दों में आप इसका सुनाइए कि मूल्यों की ध्वजावाहक नारी कैसे है। श्री मधु बघेल जी।
सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित परमादरणीय श्रद्धेय दीदी जी और इस सदन ईश्वरीय सदन में पधारे सभी सम्मानित बहन जी और भाई जी, आप सबको मेरा सादर अभिवादन और ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, जिस तरह दीदी ने बताया कि महिलाएं एक लक्ष्मी का रूप हुआ करती थी। लगाना बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि आज शायद हमारी वो सभ्यता कहीं खो गई है। आदि काल से भगवान शिव ने भी जब शक्ति की पूजा की है, तो समझ लीजिए कि शक्ति कितनी महान है। भगवान शिव जो सृष्टि के कर्ता धर्ता पालनहार विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, जो स्त्री के बिना नहीं चल पाए, तो ये संसार कैसे चल सकता है। इस संसार की जननी स्त्री है और इसी स्त्री की आज दुर्दशा है। वो दुर्दशा इस कारण भी हुई क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी रही है। पहले हमारे जब माँ बाप थे तो बहुत अच्छे संस्कार थे, आगे कुछ जनरेशन आई तो हम अपने संस्कारों को भूल गए, और ये जो जनरेशन है ये संस्कार तो बिल्कुल ही भूल गए। उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगें, मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आज के वक्त आप देखिए कि अगर घर में दो कमरे हैं या चार कमरे हैं, दो बच्चे, दो हस्बैंड वाइफ, तो सबके हाथ में मोबाइल है, किसी के पास किसी को भी देने का टाइम नहीं है। इसीलिए हम सब रिश्ते नातों से दूर चले गए। वो दादी नानिया की कहानी कहाँ गई, कहाँ गए हमारे बच्चे जब दादा की कोहन बाजू पर सिर रख के कहानी सुना करते थे। आज ये वो जो गैप हुआ है यही कारण है। हम जब छोटे थे तो हमें कहानी सुने बिना नींद नहीं आती थी, लेकिन आज के माँ बाप वो हैं कि माएं अपना जिम्मेदारी नहीं समझना चाहती, क्योंकि एक तो बराबर की उनकी इनकम है, एक इस बात की भी लड़ाई है कि मैं इतना कमाती हूँ तो मैं क्यों काम करूँ घर का, मैं क्यों जिम्मेदारी संभालूँ, बच्चा तुम्हारा भी है, तुम भी संभालो। और बच्चों की ये हालत है कि अगर एक रूम में बैठे हैं तो वहीं से फोन करेंगे कि मम्मा हमारा खाना इसी रूम में भिजवा दो। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत बड़ी कमी है जो हमने इस देश को, अपनी जनरेशन को यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए हमें ही पहले बहुत शिक्षित होना पड़ेगा और उसके लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है। हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। हम वो सम्मान खो चुके हैं, हम उन बच्चों से वो प्यार खो चुके हैं। आज हर बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना चाहता है, क्यों? कहीं ना कहीं वो भी बहुत दुखी है, क्योंकि हर किसी को अपना सेपरेशन चाहिए, हर किसी को एकांत चाहिए, अपनी प्राइवेसी चाहिए। पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। आज अगर हम सब मिलकर, जैसे कि ये हमारे ईश्वरीय स्कूल ब्रह्म कुमारी जी के हैं, हम अगर ये अटेंड करते हैं तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। जैसे कि आज सुबह मैंने भी क्लास अटेंड की थी, वो तो इतना अच्छा लगा सुन के कि जब हम एकजुट होकर बैठेंगे, बात करेंगे, तो उस गैप को हम दूर कर पाएंगे। तभी हम अपने आप को वो वाला युग ला पाएंगे जो कभी सतयुग और द्वापर में हुआ करता था, जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी, जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आई हैं, बहू आती है तो कह पाएंगे कि लक्ष्मी जी आई हैं। लेकिन आज मेरे हस्बैंड 6 बार के सांसद हैं और अब आगरा से सांसद और हेल्थ मिनिस्टर हैं। संडे में हमारे यहाँ बहुत बड़ा दरबार लगता है, लेकिन हर संडे 5-6 ऐसे केस आते हैं जो डिवोर्स के होते हैं। शादी को 1 साल भी नहीं होता, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब पूछा जाता है तो कारण क्या है। कोई कारण नहीं कि हमें टाइम नहीं देता, वो हमें टाइम नहीं देते। तो ये टाइम ना देने का मतलब क्या है? क्योंकि वो जो आपके अंदर एक घमंड आया कमाने का, वो एक उसने दूरी बना दी है, और उसमें भी 24 घंटे में भगवान के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप जैसे दीदी ने बताया कि आप जब मेडिटेशन करेंगे, आपका मन शांत होगा, ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर घमंड पैदा ही नहीं होगा कि हम क्या हैं, कि मैं इतना कमाता हूं या मैं ही क्यों काम करूं, तुमने नहीं किया तो मैं भी कर दूं। आज यही चीजें आड़े आ रही हैं। तो ईश्वर के भेजे हुए आप लोग नायाब तोहफे हैं। मैं आगरा में कई उस पर जाती हूँ, सेंटर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप लोग ना होते तो आधे से ज्यादा लोग पागल ही हो गए होते, क्योंकि बहुत लोग आकर अपने मन की शांति पाते हैं, अपने दिमाग को पूरी तरह से संतुष्ट करके जाते हैं, और कई लोग अपने मन की भावनाओं को, जो गलत भावनाएं होती हैं, उनको यहीं पर छोड़कर जाते हैं कि आज हम कसम खा रहे हैं कि हम किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे। जब छोटे छोटे बच्चों के डाइवोर्स होते हैं, एक साल भी नहीं होता शादी को, मेरा मन रोता है। और दीदी आप यकीन नहीं करोगे कि छोटी छोटी चीजों पे जो पायल, एक पायल की क्या औकात होती है, मोबाइल, और ये साक्षी हैं क्योंकि मंत्री जी के साथ रहते हैं ये, तो मतलब मैंने कई घरों को इसी तरह बसाया, पायल चाहिए लो, मोबाइल चाहिए लो। तो ये जो है, कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, पर आपके घर में अगर काम वाली भी है तो उनको भी ये समझाओ कि बच्चों को जोड़ो, उस गैप को दूर करें जो गैप हमने पैदा कर दिया है। बच्चों के पास बैठें, उनसे प्यार से बातें करें, तभी हम एक सुनहरा स्वर्ण युग बना पाएंगे। इसके लिए हमें भी शिक्षित होना जरूरी है, और जब तक हम पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान में नहीं जाएंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने मन को शांत नहीं करेंगे, ये समझ हमें कभी नहीं आएगी। और जब तक ये नहीं आएगा तो वृद्धाश्रम लगातार खुलते जाएंगे, पागलखाने भी खुलते जाएंगे। तो ईश्वर आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप पूरे संसार को ईश्वरमय बना दें। और मैं धन्य हुई आज आप लोगों के दर्शन पाकर। दीदी मैं कभी भी इस चीज को नहीं भूल सकती कि इतना मुझे सुंदर लगाया, क्योंकि मैं जब भी आई हूँ यहाँ VIP टूर पे आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं तो लगातार 25-30 लोग आते हैं, तो नहीं इतना सब हो पाता। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और आपने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हम सबको बताया कि कैसे हमें अपने फैमिली को कैसे बचाना है और कैसे उनको मोरल वैल्यूज देना है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, और मैंने तो देखा है कि छोटे बच्चों को, आप बुरा नहीं मानिएगा, कि जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, और छोटा सा बच्चा है 1 साल का, अभी इसको समझ भी नहीं है, लेकिन वो मोबाइल नहीं छोड़ता है। अब वो मोबाइल पे क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सीख रहा है, उस पर विशेष अटेंशन दीजिए। हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा आता है 2 साल का, वो मोबाइल पे ही लगा रहता है, सिर उठा के भी नहीं देखता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको मोबाइल मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो ये आदत डालने वाला कौन? तो हम सब भली भांति जानते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दें, और वही बच्चे बड़े होकर के वो आगे अच्छे संस्कार देंगे। हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा था हमारे सामने, हम कहीं जा रहे थे, 2 साल का बच्चा, तो वो अपने पापा की उंगली पकड़ के कहता है कि पापा उधर चलो ATM पे, पैसे निकालना है। इतना मनी माइंडेड कि 2 साल के बच्चे को भी पता है ATM पे जाना है और पैसे निकालना है और चीज लानी है। तो जब हम इन चीजों के लिए उन बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या हम वैल्यूज के ऊपर ज्ञान नहीं दे सकते? उनके अच्छे संस्कार बनाने के लिए हम सभी निमित्त हैं। आप सभी से भी हम सुनना चाहेंगे, आप सभी रेडी रहना, कि आपके भी हम विचार सुनेंगे कि आप भी क्या कहना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर के, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुणों से हम भरे हुए हैं, लेकिन आज गुण वो लुप्त हो चुके हैं। तो उन गुणों को हम फिर से जागृत करेंगे। जैसे कहते हैं कि एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं था। तो वो, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया, तो वो सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हों और मैं अपनी रोटी को चला सकूं, मैं अपने परिवार को पाल सकूं। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था। उसने कहा चलो मैं इसको बेच देता हूं और अपने परिवार को पालूंगा। तो उसने बेचने का जब सोचा तो उसने मन में आया कि कितने का बिकेगा, है लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, इससे ऊपर तो बिकने वाला है नहीं। तो उसने कहा कि, उसने सबको बोला कि हमारा ये छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, इसको हम बेचना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। तो जो खरीदने वाला था उसने कहा एक बार रिसर्च करते हैं कि ये क्या है यहाँ पर। तो पता चला कि उस जमीन के नीचे एक कुआं है और उसमें जो है बहुत सारा तेल है, और वो कई हजारों में क्या, लाखों में क्या, करोड़ों में बिक सकता है। तो जब रिसर्च हुई तो वास्तव में उसका करोड़ों का फायदा हुआ, करोड़ों में वो छोटा सा टुकड़ा बिका और उसका सारा कर्जा भी उतर गया और वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, बहुत धनवान बन गया। तो कहने का भाव है कि कई बार हमारे अंदर बहुत वैल्यूज हैं, गुण हैं, लेकिन उन गुणों को हम जागृत नहीं करते। हम ऐसे ही कह देते हैं हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, बस दो शब्द बोले और छुट्टी। लेकिन सहन शक्ति क्यों नहीं है? एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, क्या सहन शक्ति नहीं है? है। उसको पालती है, उसको बड़ा करती है, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, है? उसको नौकरी दिलवाती है, उसके अंदर सहन शक्ति भी है और पेशेंस भी है, धैर्यता भी है। लेकिन फिर वो क्यों कहती है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाती है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे सहन करना चाहिए। जैसे बहन जी बता रहे थे कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ही इसी बात पे होता है। हम पढ़े लिखे हैं, हम भी जॉब करते हैं, हम भी इतना कमाते हैं, तुम कमाते हो तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कमाते हैं। हम पहले ही कह देते हैं हम नहीं सहन करेंगे। तो जैसे आपने मन को थॉट दिया कि हम सहन नहीं कर सकते, तो मन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता उस चीज को, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप अपने मन को ये थॉट दो कि मुझे सहन करना है, मुझे अपना परिवार बसाना है। पहले के लोग क्या कहते थे कि लड़की को इसीलिए नहीं पढ़ाते थे कि कहीं ये ना कह दे कि हम नहीं रहते घर में, ससुराल में हम नहीं रहेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो जॉब कर लेंगे, इसीलिए कि घर टूटने ना पाए। तो पढ़ाई का मैटर अलग है, जॉब का मैटर अलग है और परिवार को बसाने का मैटर अलग है। तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे अगर हम ही घर नहीं बसाएंगे, हम ही परिवार को अच्छे से उनका लालन पालन नहीं करेंगे, तो हम कैसे बच्चों को कहेंगे कि तुम भी अपने घर को बसाओ। तो इसलिए परिवार टूटते जा रहे हैं। जैसे बताया डाइवोर्स के केसेस कितने आ रहे हैं, बात बात में डाइवोर्स है, मोबाइल नहीं मिला डाइवोर्स, पायल नहीं मिली डाइवोर्स, छोटी सी बात कह दी डाइवोर्स, क्यों? तो हम शुरुआत करें अपने आप से। कि मुझे बदलना है, मुझे झुकना है। अभी परसों एक क्लास चल रही थी, उसमें मैं सुन रही थी कि एक दो परिवार थे, तो उसमें एक में बड़ी शांति रहती थी और एक में हर समय झगड़ा 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 रहता था, हर समय अशांति। तो क्या कारण था? सुना आप किसी में, किसी ने सुना था कि एक घर में जो शांति रहती थी वो हर व्यक्ति उसमें से अपनी गलती को स्वीकार करता था, वो अपनी जिम्मेवारी समझता था कि मेरी ये जिम्मेवारी है और गलती हुई है तो मेरी है। और जिस घर में झगड़ा रहता था उसमें क्या बताया, उनकी वजह से ब्लेम करना, ये गलती मेरी नहीं है, गलती खुद भी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, ये गलती दूसरों की है। तो दूसरों के ऊपर डाल रहे थे, इसलिए घर में झगड़ा ही झगड़ा है। आज यही कारण है, सच पूछो तो हम कोई भी गलती कर भी लेते हैं लेकिन उसको हम मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते नहीं मेरी गलती तो है ही नहीं। जब हम नहीं मानते तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं मानते। छोटे से बच्चे से कहो बेटा तुमने ये गलती की है ना, सॉरी बोलो, कहेगा नहीं बोलेंगे सॉरी, मेरी गलती नहीं है। जो भी गलती है वो सारी आपकी है, क्योंकि हम उनके अंदर संस्कार कौन से डाल रहे हैं, कौन से संस्कार डाल रहे हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। जब बच्चा गिर जाता है बचपन में, छोटा होता है, तो उसको चोट लगती है, हम क्या कहते हैं, बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, इस चेयर की गलती है, इस टेबल की गलती है, इस धरती की गलती, इसको मारो, और उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उस बच्चे में कौन से संस्कार आ रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है। तो इसलिए आज घर घर में कारण यही है, झगड़े का, अशांति का कारण यही है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अपनी गलती है, चाहे भले दूसरे की भी है, ठीक है, मैं सॉरी कर देती हूँ, क्या हम घिस जाएंगे, क्या हम छोटे हो जाएंगे, हैं? छोटे तो नहीं हो जाते हैं, हम जैसे हैं वही रहेंगे। और आपको पता है कि इसमें जितनी नम्रता हम धारण करते हैं उतने हम आगे जाते हैं। आप सभी शिवानी दीदी से अच्छी तरह से परिचित हैं, है ना, सभी परिचित। तो शिवानी दीदी आज वर्ल्ड फेमस हो चुकी हैं, किस वजह से, किस वजह से, कितने उनके अंदर नम्रता है। हम तो उनके इतने क्लोज देखा है उनको, बहुत नजदीक से, और आई भी हैं हमारे यहाँ, 4-5 बार आ चुकी हैं। मैंने देखा है कि ईगो नाम की चीज नहीं कहीं से भी किसी प्रकार का, कि मैं बड़ी हूँ, मैं तो इतनी फेमस हूँ, मैं ये पढ़ी लिखी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इतनी नम्रता है, इतनी नम्रता है, चाहे छोटा भी है चाहे बड़ा भी है, उसको हमेशा आगे रखती हैं। जैसे हमारी दीदियां हैं, तो जब तक वो नहीं बैठ जाएंगी तब तक खड़ी रहती, वो आगे नहीं चलेंगी तब तक खुद नहीं चलती, और कोई इच्छा नहीं अंदर में। आप सोचो इतना बड़ा वक्ता कोई इच्छा ना रखे, आजकल धन के तो सभी लालची होते। मैंने खुद पर्सनली उनको इतना देने की कोशिश की कि दीदी आप थोड़ा सा, आप बाबा के घर में आए हो, आपका भी तो खर्चा होता है ना, आते हो जाते हो, किराया भाड़ा सब लगता है। नहीं, ये बाबा का है, बाबा की सेवा है, बाबा का घर है, तो हर समय उनका समय, श्वास, संकल्प, बोल, हर चीज आज परमात्मा की है, इसलिए आज वो इतनी आगे बढ़ रही हैं। और मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ना ही आगे बढ़ना है। कोई कहे आज हमारे पास धन है इतना, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी बड़ी कोठी है, इतनी सारी कोठियां, हम इससे आगे नहीं हैं, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे अंदर मोरल वैल्यूज हैं, गुण हैं, अपने आप को गुणों से सजाओ तो देखो आप कितने आगे जाएंगे। तो आप सभी में से कौन ऐसा है जो अपने वक्तव्य रखना चाहेगा, कोई अनुभव सुनाना चाहेगा? आप सभी भी शेयर करेंगे। आ जाइए, आपका नाम? उन्होंने हाथ खड़ा किया। तो आप सभी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे पूरे सेशन में, तो आप तैयार रहें। नेक्स्ट
ओम शांति। आप सभी जो यहां पधारे हैं सब विशेष हैं, सबसे पहले तो, क्योंकि सारी दुनिया में से क्यों आप ही चुने गए यहां आने के लिए। ये नशा हमेशा रहे, मैं विशेष हूं। जहां तक अभी हमने दीदी को सुना, हमने बहन जी को भी सुना, दोनों को सुना, मी, हम दोनों लाइफ को जी रहे हैं। आई एम इन टू द प्रोफेशन एंड एज वेल एज अ ब्रह्मा कुमारी। एज अ प्रोफेशन आई एम वर्किंग विद एन एमएनसी फाइजर एज अ मैनेजर। जहां तक कि दीदी ने अभी कमाने वाली बात कही, यस, जीवन निर्वाह के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। आप फाइनेंशियली अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, बहुत अच्छा है, परंतु क्यों बाबा ने प्यार से परमात्मा को, हम यहां बाबा कहते हैं, है ना, बाबा ने क्यों नारी शक्ति को ही चुना? यहां पर भी हम देख सकते हैं अभी नंबर्स में, भाई हम काउंट कर सकते हैं, एंड आप बहुत सारे हैं, है ना। बाबा ने भी नारी शक्ति को इसलिए ही चुना कि हम कुछ विशेषताएं लेकर, कहते ना, पैदा होते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं, हम बाहर भी संभाल सकते हैं, हम घर भी संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर काम करते हैं तो हम घर नहीं संभाल सकते, हम बच्चों को लालन पालन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसीलिए अष्ट शक्ति नारी को कहा जाता है, पुरुष को नहीं, है ना। तो विशेष बाबा हमें, जैसे होते ना, अभी हमने यहां लौकिक दुनिया के बारे में सुना कि हाँ ये सिचुएशन है, पर सिचुएशन में कभी फंसना नहीं है। परमात्मा ने बताया कि सिचुएशन, परिस्थिति आपके मन की स्थिति को परिवर्तित ना कर सके, परंतु आपके मन की स्थिति परिस्थिति को परिवर्तित करे, और वो हम यहां ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं। यहां कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दीजिए, दुनिया में रहकर दुनियादारी निभाते हुए आपकी स्थिति कैसे उस परमात्मा से कनेक्ट होकर स्टेबल रहे, दैट इज व्हाट इज ऑल ब्रह्मा कुमारी ज्ञान ऑल अबाउट। बाबा ने जब पहली बार ये चीज, मतलब दीदी ने अभी शिवानी बहन का नाम लिया, दीदी शायद ही कोई होगा जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा है और दीदी को ना जानता हो। हम दीदी के बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं उनको, और उनसे बातचीत भी होती रहती है शूटिंग्स को लेकर। तो दीदी का सिर्फ एक ही बोलना होता है कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बाबा ने हम नारी को देकर भेजा है ना, बस उसको भूलना नहीं है हमें, जो अष्ट शक्तियां हैं उनको याद रखना है। ये नहीं समझना कि जो हमारी सहनशीलता है, हमारा धैर्य जो है, वो हमारी कमजोरी है। कुछ लोग बोलते हैं आजकल कि जो सहन करते हैं ना, तो न्यू जो जनरेशन है वो उसको क्या समझती है, न्यू जनरेशन समझती है कि ये सहनशीलता गुण नहीं, रादर आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं वो, लेकिन नहीं। ये आपका वो गुण है जिसको आपने अगर सिर्फ एक इस गुण को भी पकड़ लिया तो आपको वो चार सारे जो गुण हैं ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। बाबा ने हम में से किसी को भी नहीं भेजा जो कि इन सर्व शक्तियों से विद्यमान ना हो। बस डिफरेंस इतना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे हम आपको कि किचन हम लोग हर एक जाता है किचन में, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज नहीं करते ना वो बॉटल्स पीछे चली जाती हैं और हमें फिर याद भी नहीं रहता कि वो सामान हमारे पास है। हम जाके मार्केट से लेकर आते हैं और फिर याद आता है ये तो था घर में हमारे पास में। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो जो बॉटल्स पीछे चली गई हैं, बस उनको हमें बाहर और सामने लेकर आना है बाबा से कनेक्ट होकर। खुद को जानो, खुदा को पहचानो और उसकी सृष्टि को ड्रामा की तरह देखना है साक्षी होकर। स्थिति अपने आप स्टेबल रहेगी, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं जिसका हम सामना नहीं कर सकते बाबा के ज्ञान के साथ में। इसी के साथ ओम शांति।
थैंक यू सिस्टर। अभी नेक्स्ट किसने हाथ उठाया था? आपने? नेक्स्ट कौन आ रहा है? अब जिस नेक्स्ट तैयार रहना, जिसको भी सुनाना।
ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि आपको भगवान के घर माना अपने घर में, अपने असली घर में आने का चांस मिला ना। मेरा नाम बीके सुषमा है, मैं गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ और तकरीबन 18 साल से ब्रह्मा कुमारी पाठशाला बाबा ने जिम्मेदारी दी है चलाने की। तो बात हो रही है नैतिक मूल्यों की, माना जो महिला है वो नैतिक मूल्यों को या वैल्यूज को, जो हमारे वैल्यूज हैं, एक महिला में ही उतनी ताकत है जो उनको बरकरार रख सकती है और उनको यूज करके अपने घर को जितना चाहे ऊंचा उठा सकती है। पहले हम देखते थे हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो मदर्स, हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हमारी जो मदर्स थी उस जनरेशन में, क्या हमने सुना कभी कि डाइवोर्स हुए? सुना? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनके अंदर उतनी पावर थी, उनको पता था, उनको बच्चों की परवरिश की वैल्यू पता थी। ऐसा नहीं कि उस समय पे उन पर कुछ जुल्म नहीं होते हों जिसको कहें, या उन पर कोई ऐसा गलत कुछ नहीं होता उनके साथ कि वो कुछ हुआ ही नहीं और बहुत अच्छा जीवन था। नहीं, उनका जीवन भी बहुत बेटर नहीं रहा। बहुत माताएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहन किया लेकिन अपने परिवार को बनाने के लिए उन्होंने उन चीजों को अपनी ताकत से, अपनी विल पावर से उनको सहन करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्यों सेक्रीफाइस किया? क्योंकि उनको बच्चों के जीवन की वैल्यू पता थी कि मैं बच्चों को परवरिश मुझे अपनी करनी है तो मुझे ये चीजें सर्वाइव करनी है। लेकिन आज क्यों हो रही है चीजें? क्योंकि आज एक सिंगल के हम तो कोई बात नहीं, सिंगल मदर बन के बच्चों को पाल लेंगे। एहसास नहीं होता कि सिंगल मदर के जो बच्चे होते हैं या सिंगल पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं, अंदर से कितने उनको घाव मिले होते हैं। वो उनकी परवरिश होती है, पलते तो सब है, पलते तो जानवर के बच्चे भी हैं, ऐसा तो नहीं कि पलेंगे नहीं, लेकिन उनको मिला क्या? वो खोखले होते हैं अंदर से। फिर जब वो बड़े होंगे तो वो क्या देंगे समाज में? वो भी वही चीजें देंगे जो उन्होंने जो लिया। तो मैं छोटा सा एक अपना अनुभव कहें या जो मैंने अपने जीवन से अपने बच्चे को सिखाया, मेरा एक बेटा है, अभी उसने अभी कुछ महीने पहले उसने अपना MBA कंप्लीट किया है। तो वहां पर जो उसका एक जो उसका क्लासमेट थे जो जितने भी कहें, तो उसमें तकरीबन 150 बच्चे थे, और उन 150 बच्चों में केवल एक वही बच्चा ऐसा था जो ना तो अंडे, जो अपना ये बीड़ी, सिगरेट, दारू, जिसमें कोई भी किसी चीज का एक ये चीज नहीं थी। तो जो उनके टीचर थे, तो एक इफेक्ट जाता है ना, बच्चा ऐसा है तो जरूर कुछ तो बात है। तो उसने पूछा फिर उससे, भाई तुम्हारे अंदर ये चीजें क्यों नहीं है? तो उसने बताया मेरी मम्मी ब्रह्मा कुमारीज में चलती है। तो अच्छा बोला, तो अपनी मम्मी से मिलवाना। और उसने ब्रह्मा कुमारीज, अच्छा तो मैं भी कोर्स करती हूँ कि क्या होता है, उससे पूछा। अब चूंकि वो बचपन से ही आता है तो उसको काफी चीजें पता थी, तो उसने बताया मैम ऐसे कोर्स करना पड़ता है ये ऐसे। तो उसने सर्च करके कोर्स किया, वो आज वो रेगुलर स्टूडेंट है ब्रह्मा कुमारीज की। किस लिए? कि उसने ये चीज देखी कि ये बच्चे को इतना कैसे, ऐसा ऐसी दुनिया में रहते हुए कैसे नहीं ये चीजें करता है, क्यों नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ये जो ज्ञान है ना, ये भगवान ने जो इस समय ज्ञान दिया आकर के, और माताओं को जो इतना ऊंचा उठाया, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं थे, बहुत कष्ट थे शुरुआत में, लेकिन जब बाबा मिला तो बाबा के मिलने के बाद जो ताकत आई, वैल्यूज तब भी थे, वैल्यूज की कमी नहीं थी, घर से शिक्षा मिली थी कि कुछ भी हो जाए परिवार चलाना है। ये शिक्षा हमें बचपन से ठोक ठोक के दे दी गई थी कि कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपको घर वापस नहीं आना है, आपको वही परिवार चलाना है, अपने घर की परवरिश करनी है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। यही परवरिश मिली तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं। और ऐसे में ही फिर जब भगवान मिला, जब मेरा परिचय हुआ, भगवान जब मुझे मिला, तो उसके बाद तो जो जीवन में आनंद आया। तो सारे कष्ट जो थे उससे पहले के, तो वो कष्ट जैसे कष्ट रहे ही नहीं, वो एक आनंद बन गया, क्योंकि नॉलेज मिल गई, समझ मिल गई कि ये जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है तो इसके कहीं ना कहीं कारण तो हम ही है। ये ज्ञान एक समझ में आया। तो आपने जिसने भी, मैं कहूंगी कि जिसने भी, कोई नए भी होंगे जिन्होंने शायद कोर्स भी नहीं किया होगा, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप एक बारी कोर्स जरूर करिए। बाकी आप आगे मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, बाकी एक बारी आप कोर्स जरूर करिए ताकि आपको पता चल सके कि भगवान के आने का कारण क्या है इस धरती पर, और भगवान आकर के हमें क्या से क्या बना रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। और नेक्स्ट,
ओम शांति। वीमेन फ्लैक्स बैरियर ऑफ वैल्यूज, ये जब सुनते हैं कि नारियों के हाथ में ध्वज, तो ये सुनना ही अपने आप में एक बहुत गरिमा का अनुभव कराता है, क्योंकि वैल्यूज एक ऐसी चीज है जिसे आज हर एक पकड़ना चाहता है, धारण करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो जैसे कोई एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो सोचता है कि 100 लोग नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही आप भी वैल्यूज को धारण करने वाले, जिसको कोई नहीं कर सकता उसको कौन कर सकता है, उसको कौन कर सकता है, बोलिए कॉन्फिडेंस से, उसको कौन कर सकता है? नारी, इट मीन्स मी, मैं उसको कर सकती हूँ। तो वो कैसे होगा अप्लाई? अच्छा भी लग रहा है सुनना, करना भी चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा? तो जैसे एक वृक्ष होता है, उस पर अगर हमें बहुत अच्छे फल चाहिए तो सबसे पहले हम जो ध्यान देते हैं उस बीज की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि उसका सीड अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर पानी देना, ये सब कुछ होता है, तब वो उसके पत्ते, फल, फूल, ये सारे अच्छे आते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप एक नारी को देखें, नारी को आप एक बीज की तरह लें जिस पर उसका पूरा परिवार वो है। कई बार फैमिली छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, एंड परिवार के हर एक की जो सोल है, जो व्यक्ति है, हम चाहते हैं वो फ्रूट्स बहुत मीठे हों। हमारा बच्चा अच्छा हो, भाई बहुत अच्छा हो, बहन बहुत अच्छी हो, सब बहुत, सब मीठे चाहिए हमको, सब हमको मीठे चाहिए। तो लेकिन वो मीठे मिलने के लिए सबसे पहले वो मीठा भी कहां से बनेगा, जब पहले नीचे रूट से जो जाएगा उस आधार पर उस फ्रूट की क्वालिटी डिसाइड होगी। तो उसी आधार से आज हम अपनी फैमिली को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फाइनेंशियली बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कहा कि आज अर्निंग वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो हमें दूसरे एस्पेक्ट पर जो ध्यान देना है वो है उनकी वैल्यूज। तो वैल्यूज उनके अंदर लाना, अब उनके अंदर लाने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए। अब जब हमारे अंदर होने की बात आती है तो हो, अभी बहुत देर से हम सुन रहे हैं कि आज वो चीज हमारे अंदर सहन शक्ति मेन तो ये है ना, वो नहीं रही है। तो सहन शक्ति जाती कब है, जब हम अपने बारे में कुछ नेगेटिव सुनते हैं या सोचते हैं या हम अपने को वीक फील करते हैं, इससे सहन शक्ति गई। तो अगर मैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा इस टाइप का अगर मैं सुनूं, चिंतन करूं, तो उससे मेरे अंदर की जो शक्ति है वो इमर्ज होगी। अगर हाथ पर एक वजन है तो मुझे फिजिकल पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो मेरी फिजिकल पावर जितनी बढ़ जानी चाहिए, मैं वजन को सहन कर सकती हूं। सेम थिंग मेंटल पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी तक अगर आप देखो पूरे दिन मन क्या भोजन करता है, मन का भोजन पूरे दिन सोई से उठेंगे, न्यूज़पेपर ले लेते हैं, है ना, नेगेटिव या जो भी कुछ चल रहा है पूरे दिन, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रहती हैं हमारी, वो ऐसे। तो जो मन का भोजन है वो हम पॉजिटिव नहीं देते। तो अगर हम अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव ऐसा प्रेरणादायी, जो मेरे मन को स्ट्रांग बनाए, वैसा भोजन दें जिसको हम ज्ञान कहते हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हमारे पास ज्ञान के लिए यहां पर आए तो समय निकाल रहे हैं, वहां पे जाएंगे कहेंगे हाँ थोड़ा कर लेते हैं, फिर थोड़ा कहेंगे और थोड़ा कर लेते हैं, धीरे धीरे करके वो थोड़ा का थोड़ा ही हो जाता है। फिर कहते हैं अटेन किया था, करते हैं लेकिन अभी वैसे के वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू नहीं किया, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे अपने अंदर वो डिविनिटी भरनी है, तभी मैं उस डिविनिटी को आगे दे सकती हूँ। अगर मेरे अंदर डिविनिटी नहीं है तो मैं नहीं दे सकती। एंड उसका सोर्स केवल एंड केवल वो ईश्वरीय ज्ञान एंड उसके साथ साथ राजयोग है। तो आप लोग उसका जरूर अभ्यास कीजिए, क्योंकि रोजाना जितना हम उसको अपने अंदर लेते हैं, अभी कोई चीज बहुत गंदी है तो ज्यादा देर तक मेहनत करनी पड़ती है, कम है तो फटाफट हो जाता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो शायद ज्यादा फील होती है। तो डेली वो सफाई करना बहुत जरूरी है। तो डेली जब हम उस ज्ञान को सुनते हैं तब हमारे हाथ में वो वैल्यूज आ गई। आज आपने ज्ञान सुना, थोड़ी वैल्यू आई, कल सुना थोड़ी और आई, कंटिन्यू एक महीने तक किया थोड़ी और आई, तो कौन सा फ्लैग आ गया? पहले आप फ्लैग देते थे गुस्से का, उस किसी ने कुछ बोला आपने एकदम से ऐसे कर दिया, वो फ्लैग चला गया। अब आपने उसको प्यार से मुस्कुरा के दिया, ये फ्लैग गया, मुस्कुराने का फ्लैग। किसी ने कुछ बोला लेकिन आप स्टेबल रहे, ये आपके चेहरे से फ्लैग चला गया। तो आपका वो चाल चलन वो फ्लैग को आगे कर देता है। तो वो आती है इस ईश्वरीय ज्ञान और योग से। तो आज आप इस वीमेन प्रोग्राम में आए हैं तो यहां से जाकर के अपना कुछ पर्पस जरूर बनाइएगा कि मुझे आगे जाके नेक्स्ट क्या करना है, कैसे वैल्यूज को अपने अंदर और ज्यादा भरना है। ओके, थैंक यू, ओम शांति। मैं आगरा से हूँ, आगरा नपुरा सेंटर से। 24 साल ज्ञान में हो गए और 15 साल से समर्पित हूँ। मेरा शरीर का नाम है बीके शालू बहन एंड होल फैमिली ज्ञान में चलती है। और ये मेरा भाग्य है कि मुझे शिव बाबा ने शक्ति बनाया, शिव शक्ति। मुझे प्राउड है कि शक्ति जुड़ गई शिव से। अभी आप सब शक्तियां हो, बस जुड़ना किससे है? शिव से। तो कंप्लीट हो जाएगा शिव शक्ति। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स। अभी नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आइए।
मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और थैंक्स ऑफ मधु जो मुझे साथ में लेके आई। मैं शायद अकेली नहीं आ सकती और बाबा ने बुलाया, दोनों चीजें हैं। मेरी मदर यहाँ की फॉलोअर्स थी, 70s में वो यहाँ आती थी बट मैं समझती नहीं थी कि ये कहाँ जाती हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं और चली जाती हैं। फिर वो इतनी सारी कैसेट्स लेके आती थी, जो पहले टीवी वगैरह में ये प्रोग्राम्स नहीं आते थे तो वो कैसेट्स चलती थी। तो सुबह सुबह हमको स्कूल जाने से पहले कहती थी मुरली सुनो, तो हम मुरली को बांसुरी समझते थे कि कोई बांसुरी बजती होगी वो सुनाएगी हमको, बट वो कुछ और ही सुनाती रहती थी, पर हम पे कुछ असर नहीं होता था। हम स्कूल जाते आए खेले मस्त, मम्मी मुरली, यही होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें समझ आई, ऐसे परिवार से आए और ऐसे ही परिवार में आए, और आगे से दोस्त भी हमें इतनी अच्छी मिली ही सीधे रास्ते में लगाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि नारी शक्ति ऐसी है कि जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो कहीं पौधे लगे होते हैं, कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो डाउन हो जाती हैं अपने आप, तो उसमें एक स्टिक लगाते हैं, उस स्टिक को इसलिए लगाते हैं कि पौधा सीधा जाए। आई थिंक मदर का भी वही काम है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहे हैं या बहक रहे हैं तो वो स्टिक का काम हम करते हैं। वो स्टिक इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, उसको रोज चेक करना चाहिए कि फिर टेढ़ी तो नहीं हो रही। तो ये हम सब फैमिली से आए हैं, देखिए हम लोग इतने समर्पित नहीं है कि हम सब छोड़ के यहाँ आ जाएं। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन वहां रह के मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स जो है और मधु, रियली मैं इसका एहसान कभी उतार नहीं सकती। इसने मुझे इतने बड़े बड़े तीरथ करा दिए जो मेरे बाप दादा नहीं करा सकते थे। इसलिए थैंक्स लॉट सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, मेरे को कुछ बोलना नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बस मस्ती में आ गई। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स। और किसी को बोलना है? संगीता बहन, किसी को बोलना है? आज इधर आज, इसके बाद किसको, किसी को बोलना? माइक।
परम आदरणीय दीदी जी और हमारी आज की जो मुख्य अतिथि हैं मधु बहन जी, और इस सभागार में बैठी हुई सभी पावन पवित्र आत्माएं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी लगभग 3 दिन से हम इस परिसर में हैं, और शायद आप सब लोगों का भी अनुभव यही कह रहा होगा कि इस परिसर की जो चेतना है, इस परिसर का जो वाइब्रेशन का लेवल है वो बहुत हाई है, और हम सब एक सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, एक पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं, तो यहाँ के एनर्जी लेवल में दाखिल होने के लिए हमें पहले अपना लेवल थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। और बात हो रही है वैल्यूज की, बहुत डिस्कशन हुआ कल भी आज भी, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, और क्योंकि मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे भारत जैसी धरा के ऊपर पैदा किया, और उसके बाद एक ऐसे व्यवसाय से जोड़ा जिससे कि मेरे परिवार का वहन भी हुआ और सेवा का काम भी हुआ। मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ अभी पिछले महीने ही, तो बच्चों के साथ समय बिताने का, उनकी हर एक्टिविटीज को एब्जॉर्ब करने का, ऑब्जर्व करने का मुझे समय बहुत पर्याप्त मिला। आज मन अशांत है, हर चीज का जो कारण है, जो आज नकारात्मकता फैल रही है, चाहे कोई व्यक्ति समृद्ध है चाहे कोई व्यक्ति अभाव में है, हर व्यक्ति का मन अशांत है, और उस अशांत मन को शांत करने का जो ये राजयोग का एक साधन हमें यहाँ पर दीदी लोगों ने बताया, शायद इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले भी मैं एक बात और करना चाहूंगी आप सबके बीच में, कि जैसे एक किसान खेत के अंदर जब बीज डालता है तो उस बीज को डालने से पहले वो जमीन को तैयार करता है, उसको जोतता है, पानी लगाता है, कहीं कोई खरपतवार है तो उसको निकालता है, उसके बाद फिर वो उसका बीजारोपण करता है तो उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार होती है। यदि वो किसान अपनी उस भूमि को बिना तैयार किए ही उसके अंदर बीजारोपण करेगा तो वो उसकी ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और ना ही उसकी क्वांटिटी अच्छी होगी। तो यही बात जो मेरा अनुभव कह रहा है इतने सालों का, क्योंकि मैं भी योग के साथ जुड़ी हुई हूं, तो जब तक हम एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, तो उस पारिवारिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहम, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हैं। और वो बहुत ऊंचा स्तर है जब हम इस बात की बात करते हैं कि ये सारे दोष जो है वो हमारे अंदर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम इस वातावरण की, जो इस विश्वविद्यालय के अंदर जो एनर्जी का इतना हाई लेवल है, उस हाई लेवल को एब्जॉर्ब करने की पावर जो है वो हम अपने अंदर नहीं पैदा कर सकेंगे। तो हम यहां पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, उन सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप और कुछ करें ना करें, अपने लिए कम से कम आधे घंटे का समय जरूर निकालें। अब हम समस्याओं की तो बात बहुत करते हैं, दीदी समय है ना दो मिनट का, समस्याओं की बात हम बहुत करते हैं लेकिन उन समस्याओं का समाधान की बात हम नहीं करते। हम कहते हैं मन बहुत अशांत है मेरा, बैठ जाओ मेडिटेशन में, मेडिटेशन में बैठ गए फिर वही उथल पुथल लगातार चलती रहती है, तो उस उथल पुथल को शांत मैंने कैसे करना है? तो बैठ जाएं दो मिनट, आप ब्रह्मवेला में अगर बैठ उठते हैं तो इससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, और शायद ईश्वर उन ब्लेस्ड आत्माओं को ही ये प्रेरणा देता है कि वो सुबह उठे। और यहां जो हम लोग पहुंचे हैं वास्तव में ही ये हमारे कुछ बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है कि जो आज हम इतने अच्छे वातावरण में आए हैं। तो वहां पर जब आप सुबह उठते हैं तो डीप ब्रीदिंग किया करें, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लें, क्योंकि श्वास जो है इस आत्मा और परमात्मा के बीच में एक पुल का काम करता है। अगर श्वास नहीं, प्राण निकल गए तो शरीर कुछ भी नहीं है, आत्मा बाहर चली गई है, लेकिन उस आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का जो साधन है वो प्राण है। उस प्राण की गुणवत्ता को हमने बढ़ाना है, उस प्राण की शक्ति को जिस दिन हम बढ़ा लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जैसे ही बैठेंगे ध्यान करने, बाबा का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा चैनल जो है उस पॉजिटिव मोड के ऊपर लग जाएगा, नहीं तो हमारा चैनल जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। तो ये विषय बहुत बड़ा है तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहूंगी, अब मैं बात करती हूं वैल्यूज की। तो और कुछ करें या ना करें, हम अपने घर के अंदर जो बेटियां हैं, शिक्षा ने वाकई बहुत सुधार भी किया है लेकिन शिक्षा ने कहीं ना कहीं हमारे को गिराया भी है, क्योंकि शिक्षा के साथ हमने वैल्यूज को काटा मार दिया, क्योंकि हमारी देश की स्थितियां परिस्थितियां ऐसी रही हैं, उन देश की स्थितियों परिस्थितियों के कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग संस्कारों के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के लोग हमारे अंदर मिक्स होते चले गए, तो इसके कारण हमारा स्तर जो है सोच का कहीं ना कहीं गिर गया। तो हमने शिक्षा तो खूब दी अपनी बेटियों को, उनको बहुत ऊंचा पढ़ाया कि तुम बहुत अर्न करो, लेकिन उसके साथ साथ हम जब उनको बाजार लेकर जाते हैं तो अगर वो कहती है एक ड्रेस तो हम कहते हैं बेटा ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो ये संस्कार हमने डाल दिया ना वेस्टेज करने का उनके अंदर। उनको हमने ये नहीं सिखाया कि जितना नितांत आवश्यक है इस जीवन को जीने के लिए उतना ही अपने लिए जोड़ो, उतना ही अपने लिए खर्च करो, बाकी सब ये ईश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ उसी की सेवा में हमने इसको लगाना है। तो अपनी बेटियों को, और जैसा अभी दीदी जी भी बात कर रहे थे, आपसे पहले जो आए थे बहन जी, उन्होंने बोला कि बीज, तो जो जिनकी बेटियां इस स्टेज के ऊपर हैं, जिनके घर में बहुएं हैं, कि जब वो कंसीव करती हैं तो उनको कंसीव जब करती है तो थोड़ा सा उनको आप समझाइए इस बात को, कि जो आज हम कह रहे थे कि एक साल का बच्चा भी जो ये बात करता है कि मुझे फोन चाहिए, तो वो संस्कार कहां से लेके आया? मां के पेट से ही तो लेकर आया है वो, क्योंकि सारा दिन हम मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो आज की आवश्यकता भी है, मैं ये नहीं कह रही कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय को हम एटलीस्ट कम कर सकते हैं। अपनी बेटियों को हम समझा सकते हैं कि कम से कम एक घंटे का समय तुम अपने लिए निकालो, जो आपकी कोख में जो आत्मा आई है उस आत्मा के संस्कार आपने देने हैं बेटा। तो थोड़ा स्वाध्याय करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए, अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिनको यदि हम अपने उसमें शामिल करेंगे तो शायद इस चर्चा का हम कहीं ना कहीं उसको एक सकारात्मक स्तर पर हम लेकर आने में कामयाब होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, दीदी जी आपका भी धन्यवाद, आप सभी भाइयों का। थैंक यू सर,
बहुत बहुत थैंक्स आपका। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया कि अपने बच्चों का विशेष हम ध्यान दें। एक तो संग का रंग, आप देखते हैं कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं उसपे, और वो फ्रेंड्स बनाते बनाते वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, तो उस पर हम शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। कल हम सुन रहे थे, हमारे रेनू भाटिया जी सुना रही थी कि कैसे छोटी छोटी एज के बच्चे, लड़के लड़कियां क्या क्या कर रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कितने गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो हम अगर उनको चेक करें कि ये मोबाइल चला रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, और विशेषकर ड्रेस का भी ध्यान दें कि किस तरह की वो ड्रेस पहन रहे हैं। हम ये ना कहें आजकल तो जमाना ही ऐसा है ना, तो जमाना बनाया किसने? हमने खुद ने बनाया ना, तो हम खुद ही इसको ठीक करेंगे। पहले कहते थे कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन गया तो कुछ नहीं गया। और आज क्या कहते हैं? धन गया तो सब कुछ चला गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। तो वास्तव में आज हम चरित्र को कितना महत्व दे रहे हैं, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। पहले की जो बहू बेटियां थी कितने पर्दे में रहती थी, हर चीज की मर्यादा थी, और जैसे जैसे हम मर्यादा का उल्लंघन करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये भारत देश क्या से क्या बन रहा है। तो फैशन की ओर ना जाएं या जमाने को ना देखें, हम अपने को देखें और अपने बच्चों को देखें कि वो किस ओर जा रहे हैं। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो संग हमारा इतना अच्छा हो, श्रेष्ठ संग हो, तो हम पहले खुद अपना अच्छा संग करें, अच्छी चीजें देखें। हम ये नहीं कहते हैं आप टीवी नहीं देखो, आप मोबाइल नहीं चलाओ, या आप किसी से बात नहीं करो। आप सबसे बात करो, लेकिन किस तरह की बात करो। अगर कोई ऐसा है भी तो उसको भी आप पॉजिटिव कर दो। टीवी देखो लेकिन उसमें क्या देखना है, मोबाइल तो हम लोग भी चलाते हैं, कभी ऐसी वैसी चीज देखने का संकल्प ही नहीं आया और ना ही कभी देखा है। हाँ, जरूरी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है मोबाइल में, आजकल सब कुछ आता है, व्हाट्सएप पे ही आता है, तो यूज करते हैं, लेकिन क्या चीज यूज करना है, किस चीज को देखना है, तो उस बात पर हमें विशेष अटेंशन देना है। जैसे संग के रंग की बात आई, आपने सुना होगा रामायण के अंदर है कैकई
मंथरा के संग के रंग में आई तो क्या से क्या हो गया। कहां तो वो परिवार कितने अच्छे से, सब कुछ बहुत खुशी से रह रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके जीवन में जैसे ही मंथरा आई तो उसने पूरे घर को उजाड़ दिया। तो इसलिए हम कभी भी किसी की बातों में नहीं आए, अपना खुद का कॉन्शियस यूज करें कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, भड़काएगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा जो आपका घर टूट जाए, लेकिन कभी भी किसी की बातों में ना आइए। अपना खुद का दिमाग यूज कीजिए कि मुझे क्या करना है, सही क्या है और गलत क्या है। तो महिला वो चीज है जो कुछ भी कर सकती है, घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और घर को चाहे तो नरक बना सकती है। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि फैशन दिखावा छोड़ो नारी, गुणों के गहने पहनो नारी। भूले से मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान। माँ बनकर देती है जन्म, पत्नी बनकर संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान, नारी वृक्ष समान। और आज की हमारी मुख्य अतिथि जी कुछ विचार रखना चाहेंगे।
जब भोले बाबा पे इतनी बातें हुई हैं तो दो लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आंख बंद करके भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगाएंगे। हो मेरे चिंतन में, हो मेरे चिंतन में आके बसो भोले बाबा, मेरे चिंतन में, हो मेरे चिंतन में आके बसो भोले बाबा। फिर भले कुछ भी देना ना देना मुझे, हो मेरे चिंतन में आके बसो भोले बाबा। और फिर क्या होना चाहिए, जब हम ध्यान सिमरन करते हैं और पूरी तरह से, ये ठीक है कि हम गृहस्थी में हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका ध्यान करते हुए क्या सोचना चाहिए, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। आंख खोलूं तो कैलाश मंदिर दिखे, आंख मूंदूं तो बाबा जू प्यारे दिखे, आंख मूंदूं तो बाबा जू प्यारे दिखे। हो रस के सागर हो तुम, हो रस के सागर हो तुम, अब रसो बाबा जी। फिर भले कुछ भी देना ना देना मुझे, हो मेरे चिंतन, सब लोग बोलो, हो मेरे चिंतन में आके बसो भोले बाबा, मेरे चिंतन में के बसो भोले बाबा। फिर भले कुछ भी देना ना देना मुझे, हो मेरे चिंतन आके बसो भोले बाबा। हो नाम इतना जपूं मुझ में आवेश हो, और जब मैं सिमरन करूं हे बाबा, तो मेरे अंदर एक आपके प्रति एक ये लगे कि मैं आपका भक्त हूं। हो नाम इतना जपूं मुझ में आवेश हो तेरी लीला में मेरा भी परिवेश हो। कौन सी लीला में, ये जो हम बैठे हैं अभी, ये उन्हीं की लीला है। हो तेरी लीला में, हो नित लीला में मेरा भी परिवेश हो सुख के सागर हो तुम, हो सुख के सागर हो तुम, अब दसो बाबा जी। फिर भले कुछ भी देना ना देना मुझे, हो मेरी चिंतन, हो मेरे चिंतन में आके बसो भोले बाबा। सादर प्रणाम। मेरा
वेदर चेंज होता है तो गला खराब हो जाता है, पर मैं फिर भी अपने को रोक नहीं पाई. ओम शांति.
बहुत बहुत थैंक्स. आप आते रहिए ऐसे ही बाबा के घर में. और आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है, किसी के मन में कुछ आ रहा है तो जरूर बोल सकते हैं. पांच
मैंने
मिनट
शायद है लाइफ में फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा होगा, वो भी सिर्फ इसीलिए कि आज जितनी भी बात हो रही है ओम शांति को लेके, एक नारी शक्ति को लेके, एक माँ को लेके. मैं भी एक माँ हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, तो जब बात आती है ना एक माँ की तो मुझे लगता है कि हमारे देवता भी माँ के आगे नमन करते हैं. तो कहा जाता है ना कि पहले होता था कि हर बच्चे को मंत्र याद होते थे, हमें भी याद थे, तो शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हो गए, वही है हमने गिव अप करते गए कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप को भूल गए. तो शायद आज यहाँ पर आके लगा कि नहीं, जो चीज भूल चुके थे अब हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए. थैंक्स टू मधु कि वो आज यहाँ पर लेकर आई और हमने आके सोचा कि नहीं करना चाहिए. आज एक मदर है, वो अपने बच्चे को क्या होता है, मदर मुझे लगता है सबसे पहली टीचर होती है जो अपने बच्चे को हर वैल्यूज देती है, हर चीज बताती है, या घर की एक सोल होती है. मेरा ख्याल घर की इंजीनियर भी है, कुक भी है, टीचर भी है, फाइनेंस भी देखती है, तो उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. उन डिपार्टमेंट्स को करते करते वो अपना शायद जो अपने लिए टाइम चाहिए वो भूल चुकी होती है. पहले शायद जो हमें मॉरल्स मिले हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से मिले होंगे, क्योंकि मदर्स बिजी होती थी तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दे देते थे. और आजकल के बच्चों की, जो हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वैल्यूज कम हो गई हैं, डिवोर्सेज हो गए बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम लोग शायद सब लोग अपने फ्रीडम के चक्कर में न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, अपने में बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, तो वो हो जाता है. जैसे कि बात हो रही थी यहाँ पे कि हमने लड़कियों को पावर दी है, जरूरी है आज के टाइम पे, बहुत जरूरी है, पर जो मॉरल्स देने चाहिए थे एज अ लेडी हमें अपनी डॉटर्स को, वो हम भूल चुके हैं. इसलिए कि हमें लगता है नहीं बेटा, हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे पेरेंट्स ने कहा था जा रही हो ससुराल, वापस कैसे आओगी वो सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट होता था, पर शायद पेरेंट्स ने कभी नहीं पूछा होगा कि बेटा आप ससुराल में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. आज के टाइम में कुछ होता है, कॉल आ जाता है. एज अ मदर हम भी पूछते हैं बेटा सास ने क्या किया, खाना खाया नहीं खाया, तो वो होता है कम्युनिकेशन. आप मुझे लगता है कि जिस चीज पे ज्यादा कम्युनिकेट करोगे उसमें से आप ज्यादा चीजें निकालोगे. नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बात कर रहे होगे तो नेगेटिव चीजें निकाल रहे होगे. जैसे आज हम यहाँ पे पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो शायद मुझ जैसी लेडी को आज मैं खड़ी हुई हूँ. मधु भी जानती है कि मैं कभी नहीं बोलती, मैं बहुत बैकफुट पे रहती हूँ हमेशा ही. तो मेरी भी हिम्मत हुई थैंक्स टू दिस प्लेस कि मैं यहाँ आई और शायद मुझे पहचानने का मौका मिला. तो मैं सब लोगों से सिर्फ एक यही बात कहूंगी, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज करती हूँ, मैं किसी भी जगह जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं सिर्फ वहां से अपने लिए एक पॉजिटिव चीज ले आती हूँ, चाहे कुछ भी हो जो मुझे अच्छा लगे. मैं इवन किटीज जाती हूँ, कहीं पार्टी जाती हूँ, किसी सत्संग जाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूं, पर मुझे हाँ मैं हर जगह से एक चीज जरूर लेकर आती हूँ अपने लिए, जिसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में उतार सकूं उतनी चीज जो मेरे लिए पॉजिटिव हो. मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ बेटा आप जाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, पर उसमें से आप एक चीज उठा लो जो आपकी लाइफ में आगे काम होगी. नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से तो हम सब भरे ही हुए हैं, पर एक पॉजिटिव चीज लाओ जो आपको रिलैक्स करे. आज हम बड़ी दीदी को मिले थे, उन्होंने एक बात बताई, शायद मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही हम बहुत भावुक हो गए कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो अपने दिल में रखो ना, बुराई क्यों रखनी, बुराई रखोगे तो आपके पास से बदबू आएगी. तो ये है वो चीज, मुझे बहुत अच्छी लगी. मैं भी लेट गो करती हूँ चीजों को, पर मुझे आज रखा कि हाँ वो चीजें तकलीफ देती हैं, पर तकलीफ जो चीज दे रही है उसे हमें अपने पास क्यों रखना. तो आज मैं तो यहां से यही सीख के जा रही हूं कि शायद मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगी, और हाँ मैं अब जो बुरी बातें हैं वो अपने दिल में नहीं रखूंगी, उन्हें हटाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जैसा कि यहां सब कह रहे थे एक अच्छा बीज, आने वाले मेरे बच्चों के आगे जो बच्चे होंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें ये ज्ञान दे सकूं जो मैं शायद अपने बच्चों को पूरा नहीं दे पाई. तो मैं यहां से आज कुछ सीख के जा रही हूं और कोशिश करूंगी कि इस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आऊं। हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपसे कितना जुड़ सकती हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं करती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं जो सीख सकती हूँ और सीखूं। और प्लस मेरी एक प्रॉब्लम है कि एक मेरी में आदत है कि कहते हैं ना यूनिवर्सल लैंग्वेज हम सब की है स्माइल, तो मैं सबको यही कहूंगी प्लीज सब लोग जब भी बैठो किसी को देखो, कोई अनजान है या कुछ भी है, एक स्माइल जरूर दे दो, उसकी वजह से आपकी किसी से भी दोस्ती आ जाएगी। क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है इसलिए मैंने बोला, मैं और मधु बहुत साल से फ्रेंड्स हैं, ना इसको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे इसको कुछ चाहिए, पर हाँ हम दोनों के बीच में एक ऐसा कॉन्टैक्ट है कि इसको प्रॉब्लम है या मुझे प्रॉब्लम है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर बना लेना कि जिसके लिए आप जब भी फील करो तो आपके पास से एक कहते ना फ्रेग्रेंस आए, खुशबू आए कि हाँ मैंने कुछ किया है। फैमिली तो है ही हमारे पास, तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।
थैंक यू आपका, बाकी आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना कीमती समय दिया, आप सभी बैठे रहे, हम सबको सुना, और आशा है कि आप सभी अपने जीवन में भी धारण करेंगे और अपने बच्चों को और अपने परिवार को भी देंगे। यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना है, अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है इधर उधर घूमने में या कहीं इधर उधर गपशप मारने में, अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान और योग में लगाना है। एक एक बात हमें बहुत सीखने लायक यहाँ सुनाई जा रही है। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।